ओम शांति,
ओम शांति। एक मिनट दीदी, दूर दूर बैठी हैं बहनें, आगे सोफास खाली पड़े हैं, कुछ भाई भी इधर बैठे हैं, यहाँ आकर के स्थान ले सकते हैं। माताएं, आज आपको छुट्टी है, आप आराम से आगे सोफा पे बैठ सकते हैं।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा, हम बच्चों को संगम युग का महत्व बताते हैं और कहती हैं कि अगर बच्चों को ये भी याद रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं तो भी बहुत ऊंचा पुरुषार्थ हो सकता है, क्योंकि बाबा कहती हैं ये संगम युग टॉप युग है। इस युग में हमें भविष्य का भी दिखाई देता है और जो बीत गया वो भी दिखाई देता है। और दूसरी बात बाबा ये भी कहती हैं कि संगम युग में ही सारे कल्प के लिए यादगारें बनती हैं। अभी हम जो भी कर्म करते हैं, बाबा के जो भी हम चरित्र देखते हैं, वे भक्ति मार्ग में यादगारों के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। बाबा ये भी कहते हैं कि जो कर्म याद में रह करके किए जाते हैं वो यादगार बन जाते हैं। तो इस समय बाबा जो भी चरित्र हम बच्चों के सामने कर रहे हैं भक्ति मार्ग में या आगे के पूरे कल्प में, हम उनको ही फॉलो भी करते हैं और ये संपूर्ण कल्प का जीवन उन्हीं के अनुसार चलता है। तो इस समय यूं तो बाबा के बहुत सारे चरित्र हैं, लेकिन एक बाबा का बहुत प्यारा सा संबंध है हम सबके साथ। भक्ति में कहा गया है कि भगवान के साथ आत्माओं के 108 संबंध होते हैं, लेकिन एक बहुत प्यारा संबंध है, लौकिक दुनिया में भी वो बहुत प्यारा होता है, और वो संबंध ये है कि भगवान हमारा दादा है और हम सब उसके पोतरे हैं। लौकिक दुनिया में भी जो दादा दादी होते हैं ना, उनको पोतरे पोतरी बहुत प्रिय होते हैं ना। माँ बाप ज्यादा प्यार करते हैं कि दादा दादी? माँ बाप तो डांट भी लगा देते हैं, लेकिन दादा दादी केवल प्यार ही प्यार करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं दादा दादी? पोतरों को बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं, माँ बाप को तो फुर्सत नहीं होती है। तो बच्चे को भी इसलिए प्यार होता है कि जब भी उनसे पूछेगा ना कुछ, वो कुछ ना कुछ सुना देंगे। तो भगवान भी कौन है? दादा है, और वो हम पोत्रों को रोज कहानी सुनाता है। बाबा मुरली में कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र जो घुमाएगा वो चक्रवर्ती राजा बनेगा। तो ये स्वदर्शन चक्र घुमाना भी क्या है? कहानी को याद ही तो करना है ना, सृष्टि चक्र की कहानी को याद करना। और ये कहानी बाबा हमको रोज सुनाता। अब कहानी की शुरुआत कैसे होती है, कैसे सुनाते हैं अपन कहानी? एक राजा था और एक रानी थी। तो शिव बाबा ने भी हम बच्चों को कैसी कहानी सुनाई? बच्चों, लॉन्ग लॉन्ग एगो, इस भारत देश में एक बहुत ही स्तोप्रधान सर्वगुण संपन्न राजा था। उस राजा का नाम था श्री नारायण, और एक बहुत ही सतोगुणी 16 कला संपूर्ण महारानी थी, उसका नाम था श्री लक्ष्मी। ऐसे दादा ने कहानी की शुरुआत की, फिर हम पोतरे क्या कहते हैं, फिर क्या हुआ बाबा, तो बाबा क्या कहते हैं, उनका राज्य बड़ा सुखपूर्ण था, उनके राज्य में अटल अखंड निर्विघ्न सारे कार्य चलते थे, उनके राज्य का कोई शत्रु नहीं था, उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, भूखमरी नहीं होती थी, प्रजा का कोई व्यक्ति असंतुष्ट नहीं था, कोई बीमार नहीं होता था, किसी के काल मृत्यु नहीं होती थी, उनके राज्य में प्रकृति दासी थी, गाय बहुत थी, बहुत सुंदर सुंदर गायें होती थी, हंस होते थे, मोर पक्षी होते थे, सोने के पहाड़ के महल थे, उनके राज्य में ना कोई सेना थी, ना कोई पुलिस थी, ना कोई सिक्योरिटी थी, राजा रानी का प्रजा से बहुत प्रेम था। फिर हम पूछते हैं, फिर क्या हुआ बाबा, तो फिर बाबा क्या सुनाते, फिर 1250 वर्ष बीते तो ये राजा रानी ने अपना राज्य चंद्रवंशियों को दे दिया, सूर्यवंशियों ने अपना राज्य चंद्रवंशियों को दे दिया। फिर हम कहते हैं, अच्छा फिर क्या हुआ, बच्चे ऐसे ही पूछते हैं ना कहानी, अच्छा बाबा फिर क्या हुआ, फिर बाबा कहते हैं, फिर चंद्रवंशियों का राज्य आया, राम राज्य आया, बाबा कहते हैं बच्चों राम राज्य का गायन तो आप भी बहुत करते हो, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, तो वहां की प्रजा भी राम जैसी थी, राजा तो राम था ही लेकिन प्रजा भी राम जैसी थी, सब सतो गुणी थे, गुणवान थे, पवित्र थे, निर्विकारी थे, राम का राज था, चैन की बंसी बजती थी, सब सुखी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थी, उनके राज्य में भी उनका कोई शत्रु नहीं था, कोई भूखमरी गरीबी बीमारी कुछ नहीं था। महारानी श्री सीता और श्री राम का राज्य निर्विघ्न चलता था। फिर हम पूछते हैं, बाबा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, 1250 इनका राज्य भी निर्विघ्न चला 1250 वर्ष तक, फिर क्या हुआ। फिर एक बहुत शक्तिशाली राक्षस आया, क्या नाम था उस राक्षस का, रावण। फिर रावण ने क्या किया, श्री सीता और श्री राम का ताज उतार लिया, कौन से वाला, लाइट वाला ताज उतार लिया, सोने वाला तो रहा, तो जब लाइट का ताज उतर गया राजा रानी का, तो वो डबल ताज के बजाय सिंगल ताज वाले बन गए। अब सिंगल ताज वाले बन गए तो वो देवता नहीं रहे, तो अब एक ताज वाले राजा बन करके राज्य करने लगे। अब तो नाम भी बदल गया, कुल भी बदल गया, धर्म भी बदल गया, तो अब राजा का नाम क्या बन गया, राजा विक्रमादित्य, क्योंकि विक्रम करने शुरू कर दिए। फिर हम पूछते हैं, बाबा फिर क्या हुआ, ऐसे कहानी सुनाता है ना बाबा, फिर बाबा क्या बताता है, फिर क्या हुआ। कहानी तो सबको अच्छी लगती है, याद भी हो जाती है ना। अब देखो आपसे किसी से भी पूछूं, छोटा बच्चा भी बैठा होगा ना, उसको भी याद हो गई होगी। तो फिर क्या हुआ, फिर राजा विक्रमादित्य, चूंकि विक्रम संवत शुरू हो गया, तो राजा विक्रमादित्य को अपना इष्ट याद आया, भगवान शिव की उसने पूजा करनी शुरू की, उसकी बहुत महिमा गाई, उसका बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, उसमें बहुत हीरे जवाहरात मोती माणिक लगवाए, अपने महल को भी इतना सुंदर नहीं बनाया जितना सुंदर मंदिर को बनाया। फिर क्या हुआ, उसके बाद चूंकि देवता तेज खत्म हो गया, तो संतान भी योग बल के बजाय भोग बल से पैदा होने लगी। पहले तो केवल एक बच्चा एक बच्ची का जन्म होता था, लेकिन अब तो कई कई संतान जन्म लेने लगी। अब एक राजा के कई बच्चे होंगे तो सब राजा बनना चाहेंगे ना, तो फिर क्या करना पड़ा, फिर सब बच्चों में राजाई का बंटवारा करना पड़ा। कई कई तो ऐसे थे कि एक को राजा बना दिया तो बाकी संतुष्ट रहे, लेकिन कई ऐसे भी थे जो एक के राजा बनने पे संतुष्ट नहीं रहे। उन्होंने कहा हम कोई कम है क्या, हम भी राजकुमार है, हमको भी राजाई दी जाए। तो राजा को क्या करना पड़ा, अगर चार पुत्र हैं तो चारों में बंटवारा करना पड़ा, छह हैं तो छह में बंटवारा करना पड़ा, दस हैं तो दस में भी बंटवारा करना पड़ा। तो जहाँ एक राजा था वहां कितने राजा हो गए, कई राजा हो गए। तो सतयुग में तो केवल एक ही सूर्यवंशी, त्रेता में एक ही चंद्रवंशी, लेकिन द्वापर में तो कई वंश आ गए, कोई मौर्य वंश आ गया, कोई दूसरा वंश आ गया, कोई तीसरा वंश आ गया, कई वंश आ गए। और जिनको राज्य मिला उनको कहा गया कि तुम यहां से थोड़ी दूर जाकर के अपना राज्य बसाओ। तो कोई नदी किनारे चला गया, फिर कोई दूर समुद्र किनारे चला गया, फिर कोई और ज्यादा दूर जंगल में चला गया। कुछ समय के बाद उनको ये भी याद नहीं रहा कि ये कोई हमारे भाई थे या हम इतने वहां से आए थे। जलवायु बदल गई, हवा पानी बदल गया, तो कलर भी बदल गए। जो समुद्र के किनारे जाके बसे उनका कलर और हो गया, समुद्र पार जाके बसे उनका कलर और हो गया, ठंडे स्थानों पे बसे वो और प्रकार के हो गए, गर्म स्थानों पे बसे वो और प्रकार के हो गए। फिर क्या हो गया, फिर अलग अलग रंग, अलग अलग जाति, फिर अलग अलग भाषा, फिर अलग अलग कुल। तो क्या आ गई, जहां एकता थी, एक राज्य एक मत एक भाषा, वहां क्या हो गया, अनेक राज्य अनेक मत अनेक भाषा अनेक कुल। और जब बहुत अनेक हो जाते हैं तो क्या होता है, जैसे पेड़ की एक डाली है, पेड़ पर डाली एक ही है, तो कितनी भी आंधी आए तो डाली किसके साथ झगड़ा करेगी, है ही एक। लेकिन पेड़ की सैकड़ों डालियां हो और आंधी तूफान आए तो क्या करती हैं डालियां, आपस में टकराती हैं, और टकराती हैं तो क्या होता है, पत्ते भी टूट के गिरते हैं, छोटी टहनी भी टूट के गिरती है। तो जब इतनी टालटालियां हो गई तो क्या हुआ, आपस में टकराहट भी शुरू हुई, फिर हिंसा भी होने लगी, फिर अकाल मृत्यु भी होने लगी। और फिर क्या हुआ, फिर बाबा ने आगे क्या सुनाया, फिर अनेक धर्म पिता आए। कहती हैं जैसी परिस्थिति होती है ना, तो वैसा ही पुरुष इस संसार में जन्म लेता है। अब सबसे पहले इब्राहिम आया, तो इब्राहिम क्यों आया, क्योंकि इब्राहिम ने लोगों को मर्यादा का संदेश दिया। उस समय के लोगों में मर्यादा खत्म हो गई थी, खाने की मर्यादा थी ही नहीं, एक सिस्टेमेटिक मर्यादा स्थापित करनी थी। तो इब्राहिम ने आकर के लोगों को मर्यादा का संदेश दिया, इतने बजे उठो, ऐसे भगवान का ध्यान करो, ये खाओ ये मत खाओ, ये पहनो ये मत पहनो, बहुत उसने इस तरह की मर्यादा की बातें सिखाई। थोड़े दिन तो उसका प्रभाव रहा, उसके बाद फिर उसका प्रभाव भी खत्म हो गया। फिर बाबा ने क्या कहा, फिर कौन आया, उसके बाद महात्मा बुद्ध आया। तो महात्मा बुद्ध क्यों आया, क्योंकि जिस समय महात्मा बुद्ध आया उस समय लोग बहुत शिकार करते थे, निर्दोष प्राणियों को मारते थे, यज्ञ करते थे, उनमें मनुष्यों को भी बलि चढ़ा देते थे, जानवरों को तो चढ़ाते ही थे, तो इतनी हिंसा करते थे। तो महात्मा बुद्ध ने क्या उपदेश दिया, करुणा का उपदेश दिया, अहिंसा का उपदेश दिया। तो लोगों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, यज्ञ बलि नर बलि बंद हो गई, शिकार बंद हो गए, लोग दयालु करुणाशील बन गए। फिर उसका भी प्रभाव खत्म हो गया, फिर कौन आया, बाबा ने क्या सुनाया, फिर कौन आया, फिर क्राइस्ट आया। तो बाबा ने क्या कहा, क्राइस्ट ने क्या संदेश दिया, क्राइस्ट ने कहा अपने पड़ोसी से प्रेम करना ही भगवान से प्रेम करना है, लव दाई नेबर, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। गॉड इज अ काइंडली लाइट, गॉड इज लव, परमात्मा दयालु है, परमात्मा प्रेम से भरपूर है, तुम भी दूसरों को प्रेम करो। तो जब क्राइस्ट आया तो लोगों में आपसी नफरत थी, तो उस नफरत के स्थान पे प्रेम का संदेश दिया। फिर थोड़े दिन के बाद उसका प्रभाव भी खत्म हो गया। फिर कौन आया, बाबा ने क्या सुनाया, कौन आया, क्राइस्ट ओरिसा मसीह, तो ये उसके बाद आया शंकराचार्य। शंकराचार्य ने क्या सुनाया, ऐसे तो मोहम्मद भी आया, उसने फिर जो मुस्लिम धर्म था उसको सिस्टेमेटिक कुरान वगैरह बनी और फिर वो धर्म सिस्टेमेटिक रूप से चला। और उसके बाद शंकराचार्य आया, उसने क्या कहा, वो क्यों आया। शंकराचार्य ने कहा घर गृहस्थ से आसक्ति का परित्याग करो, अनासक्त बनो। तो लोगों को संसार से अनासक्त बना दिया, सन्यासी बना दिया। और उसके बाद कौन आया, उसके बाद गुरु नानक देव जी आए। तो बाबा ने क्या कहा, गुरु नानक देव जी ने क्या पाठ पढ़ाया, ये स्वदर्शन चक्र घूम रहा है ना, तो गुरु नानक देव जी ने क्या पाठ पढ़ाया। गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष काल मूर्त, माना अनेकों से ध्यान हटा करके एक में ध्यान लगाओ तो तुम्हारे अंदर आत्मबल आएगा। फिर हमने कहा फिर क्या हुआ बाबा, तो आगे क्या हुआ, गुरु नानक देव जी के बाद क्या हुआ, गुरु नानक देव जी के बाद कोई भी ऐसा महापुरुष इस संसार में नहीं आया जो सारे संसार को एक बना सके। छोटे छोटे मठ पंथ, छोटे छोटे गुरु, छोटे छोटे धर्म स्थापक, छोटे छोटे संप्रदाय स्थापित करने वाले तो बहुत आए, उनके कारण क्या हो गया, और ज्यादा भिन्नता बढ़ गई। और फिर बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति आ गई कि एक घर में छह लोग हैं तो छह लोगों के छह ही भगवान है। हर आदमी का अपना अपना भगवान, अपना अपना मंदिर, अपना अपना गुरु, अपना अपना शास्त्र। तो फिर क्या हुआ, फिर बाबा ने क्या सुनाया, फिर जब इतनी भिन्नता बढ़ गई तो सब भगवान को पुकारने लगे, भगवान आओ भगवान आओ। तो भगवान बच्चों की आवाज सुनता है कि नहीं सुनता है, सुनता है ना। तो बाबा ने क्या सुनाया, बाबा ने कहा मुझे भी बेचैनी होने लगी, जब बहुत पुकारते हैं तो कोई अपनी सीट पे आराम से बैठ सकता है, जब बहुत आवाजें आती हैं तो आदमी बेचैन हो जाता है, देखूं तो सही मुझे कौन बुला रहा है, देखूं तो सही कौन बुला रहा है। तो जब इतने बच्चों ने बुलाया तो बाबा का भी सिंहासन हिलने लगा, तो बाबा को भी आना पड़ा। तो बाबा किसके तन में आएगा, बाबा को तो पता है ये लक्ष्मी की आत्मा है, ये नारायण की आत्मा है, ये वो आत्मा है, ये वो आत्मा है। तो बाबा फिर किसके तन में आया, जो नारायण लास्ट जन्म के शरीर में, नारायण के अंतिम शरीर में बाबा आया। और बाबा ने उसको क्या नाम दिया, ब्रह्मा नाम दिया। और फिर क्या किया, जो बुला रहे थे उन सब बच्चों को भक्ति का फल दिया। तो हम सब बाबा के पास क्यों आए, भक्ति का फल पाने के लिए। मैंने बहुत भक्ति की, कितने जन्म घंटी हिलाई, 63 जन्म, कितने जन्म ये टिप्पड़ घिसाई, कितने जन्म मंदिर में जाकर के ढोलक बजाया, भजन गाए, मंदिर को धोया, मूर्ति की आरती उतारी, फल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, कितना मंदिर के चारों तरफ फेरी लगाई, बहुत कुछ किया, व्रत किए, उपवास किए, कुंडों में नहाया, भूखे रहे, यात्राएं की, बहुत कुछ किया, 63 जन्म इतना सब कुछ किया, पता नहीं कहाँ कहाँ गए होंगे, कहाँ कहाँ खोजा होगा, किसी जन्म में तो जंगल में भी खोजा होगा, मंदिर गुरुद्वारे गिरजाघर में खोजा होगा, पहाड़ों में नदियों में कहाँ कहाँ खोजा होगा, पुकारा भी होगा, बहुत कुछ किया उसके लिए, दान किया, पुण्य किया। तो इतना करने के बाद अंतिम जन्म में भगवान मिला, तभी तो मिल गया ना सबको। तो ये कितने जन्मों की भक्ति का फल है? 63 जन्मों की भक्ति का फल है, क्योंकि बाबा कहता है मैं अपने पुराने भक्तों को मिलता हूं। तो हम सब वो भक्त हैं जिन्होंने इतने बरस ढूंढा, बहुत लंबी तपस्या के बाद मिला है। बाबा कहता है मैं तुम बच्चों को घर बैठे मिल गया, इस जन्म में तो घर बैठे मिल गए बाबा, लेकिन पिछले 62 जन्मों की तपस्या का क्या हुआ? वो भी तो हमारे साथ है ना, इसलिए इस जन्म में तो सहज मिले पर पिछली तपस्या के फल रूप मिले। तो बाबा कितना प्यारा लगना चाहिए, जो बहुत मेहनत से मिलती है वो चीज की बड़ी कदर होती है। इस जन्म में मेहनत नहीं की है, राइट बात है, लेकिन पिछले जन्मों में तो की है। और बाबा कोई इस जन्म के हिसाब से थोड़ी मिला है, वो कहता है मैं अनेक जन्मों की भक्ति का फल देने आया। तो भक्ति का फल है भगवान, भगवान से मिलता है ज्ञान, और ज्ञान से होती है सदगति। अब भक्ति की भगवान मिल गया, लेकिन यही काम थोड़े पूरा हो गया। अब भगवान कहता है मेरे से ज्ञान सुनो, और ज्ञान सुनकर के पुरुषार्थ करो, फिर मैं सदगति दूंगा। तो अभी तो एक स्टेप पूरा हुआ है, भक्ति करके भगवान मिला और भगवान से ज्ञान सुन रही है। अभी दूसरा स्टेप है, भगवान को बुलाया है, ज्ञान सुन रही है, तो उसको धारण भी करना है, नंबर भी लेना है, पास विद ओनर भी होना है। वो तो अभी बाकी है ना, एक पूरा हो गया, भगवान मिल गया, लेकिन अभी दूसरा बाकी है। कौन सा? पास विद ओनर होना है। तो बाबा कहते हैं संगम युग में आप पहले आप बने ब्राह्मण, ब्राह्मण से बनेंगे फरिश्ता, फरिश्ता से देवता। तो जो पास विद ओनर होगा उसको बाबा पलकों पे बिठा करके ले जाएगा, और अगर पास विद ओनर नहीं हुए तो एक जगह को क्रॉस करना पड़ेगा, धर्मराजपुरी को क्रॉस करना पड़ेगा। तो अच्छा है ना, हम इतना पुरुषार्थ करें कि हमको वो पुरी में जाना ना पड़े, बाबा की पलकों पे बैठ के जाएं, सम्मान सहित जाएं, बाबा भी देख करके खुश हो, बच्चा बहुत कमाई करके आया है। इसलिए बाबा ने लेटेस्ट मुरली में कहा कि संस्कार परिवर्तन बच्चे करते तो हैं, लेकिन गति बड़ी तीव्र चाहिए, तीव्र गति। मान लो अपने को दिल्ली जाना है यहाँ से, और अपन गाड़ी को 20 की स्पीड पे चलाएं तो कब पहुंचेंगे? कितनी स्पीड पे चलाना पड़े? 100-150 की स्पीड पे चलाएं तब तो ठीक टाइम पे पहुंचे। तो मंजिल इतनी ऊंची है और अपन 6 महीने लगा देते हैं एक छोटी सी बात को बदलने में, तो ये तो बहुत ही स्लो गति हुई, कब संपूर्ण बनेंगे? ऐसे तो फिर हमें कई संगम युग चाहिए बदलने के लिए, और जब तक अगला संस्कार बदलेगा तब तक पिछला फिर इमर्ज हो जाएगा। तो इसलिए गति बड़ी तीव्र चाहिए, तीव्र गति माना पास विद ऑनर। तो यहाँ मधुबन में हमें समय भी मिलेगा, एकांत भी मिलेगा, भले सेवा करेंगे लेकिन सेवा करते करते भी हम अपने पे बहुत अच्छा ध्यान दे सकते हैं। अगर हम अपनी वाणी पे और अपने चिंतन पे नियंत्रण रखें, जहाँ आवश्यकता नहीं वहां ना बोले, और जहाँ आवश्यकता नहीं उस बात को ना सोचें, तो हम कितनी भी सेवा करते भी अंतर्मुखी और एकांतवासी का अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसा पुरुषार्थ यहाँ हम करेंगे। और एक मुरली में बाबा ने कहा था जो बच्चे स्वदर्शन चक्र घुमाते घुमाते रात को सो जाते हैं उनको साक्षात्कार भी हो सकता है। तो आज आप ये स्वदर्शन चक्र घुमाते घुमाते नींद करेंगे, हो सकता है बाबा आपको बहुत अच्छा साक्षात्कार भी करा दे। ओम शांति।